ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइज। इसके अंतर्गत सुनिए मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ मनोचिकित्सक और प्रोफेसर डॉक्टर आरपी बेनीवाल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, जिसे हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है कार्यस्थल में मानसिक स्वास्थ्य। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में से एक है भारत, और एक बड़ा वर्ग नौकरी से जुड़ा हुआ है। इसलिए सहायक वातावरण बनाना आवश्यक है जो मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे। इस वर्ष भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में भी निष्कर्षों, नीतिगत सिफारिशों और देश भर में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को सुधारने के लिए कई बातें शामिल थी। डॉक्टर बेनीवाल, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
जी नमस्कार।
डॉक्टर बेनीवाल, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस क्या महत्व रखता है और इस साल का विषय है कार्यस्थलों पर मानसिक स्वास्थ्य, तो इसको आप कैसे देखते हैं?
ये जो मानसिक स्वास्थ्य दिवस है वो हर साल WHO यानी विश्व स्वास्थ्य जो संस्था है वो 10 अक्टूबर को मनाती है, और इसको हम एक लीप के रूप में मनाते हैं। पूरे 7 दिन तक ये कार्यक्रम हम करते हैं, और इसका जो मेन पर्पज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर, जनता के अंदर जागरूकता पैदा करना मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिसके बारे में ज्यादातर भ्रांतियां फैली रहती हैं और वो गलत अवधारणाएं रहती हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक स्टिग्मा लोगों के अंदर रहता है इसकी। तो जितना ज्यादा हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों में अवेयरनेस लाएंगे, उससे उनको सही जानकारी प्राप्त होगी कि ये जो मानसिक रोग है ये वैसा ही है जैसा शरीर के बाकी हिस्सों के रोग हैं, जैसे हार्ट के, लंग्स के, गुर्दे के या शरीर के अन्य जो जितने भी अंग हैं उनके जैसी बीमारियां होती वैसी ही ब्रेन की जो बीमारी है सेम वैसी है, और उसका भी इलाज वैसे ही संभव है, और इसका इलाज पूर्णतया संभव है, इसके विशेषज्ञ भी होते हैं। तो ये हमारा जो उद्देश्य रहता है कि हम मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह मनाएं और मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक तक अपनी बात को पहुंचा पाए।
डॉक्टर बेनीवाल, एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट कितना जरूरी है किसी भी कर्मचारी के मानसिक स्वास्थ्य के लिए, और अगर एक जगह नेगेटिव वर्क एनवायरनमेंट मिलता है जहां पर, तो उसके साथ किस किस प्रकार के रिस्क जुड़े रहते हैं?
जैसा स्पर्श जी अभी आपने बताया कि इस बात की जो थीम है WHO की, जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, उसकी थीम है मानसिक स्वास्थ्य वर्क प्लेस पे कैसा है, यानी कार्यस्थल के ऊपर आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, वर्किंग प्लेस के ऊपर आपका मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस, ये इसकी थीम है। ये थीम हर बार WHO अपने अलग अलग हिसाब से रखता है, लेकिन इस बार ये थीम ये है। इसका उद्देश्य ये है कि हम जहाँ काम करते हैं या कोई भी व्यक्ति जहाँ काम करता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, वहां पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसके मानसिक स्वास्थ्य पे, उसके वर्किंग एनवायरनमेंट का क्या फर्क पड़ता है, इसको हम इस बार फोकस में ला रहे हैं। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई एनवायरनमेंट जहाँ पे वो वर्क करता है वहां का एनवायरनमेंट अगर उसका अच्छा होगा तो वो अच्छे से काम कर पाएगा, उसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी होगी और वो अपनी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर देगा
जी।
अब क्या क्या रीजंस हैं वहां पे उसके मानसिक स्वास्थ्य को, कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं, वो ये है कि अगर वहां पे एनवायरनमेंट है वो जो उसके कोलीग्स हैं उनके साथ में उसका एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा, आपस में लोग बाग एक दूसरे के साथ में किसी भी बात के ऊपर वो एक दूसरे से उलझे रहेंगे या खींचातानी रहेगी या कोई ना कोई उनके अंदर काम के बंटवारे के बारे में गलत फहमियां होंगी कि नहीं ये मेरा काम है, ये आपका है, ये आपने क्यों नहीं किया, मैंने ये बोला था, तो इस टाइप की जो चीजें होती है उससे वो तनाव में व्यक्ति आ जाता है और वो हरदम फिर परेशान रहता है कि ये मेरा काम था लेकिन मेरे को ये दे दिया गया, वो दे दिया गया। या फिर हम जैसे ये कह सकते हैं कि जहाँ एम्प्लॉय काम करता है, जो एम्प्लॉयर है यानी जो बॉस है, जो उनका सीनियर मोस्ट है, वो अगर उनके साथ में एक अच्छा सा व्यवहार रखें और उनके साथ एक बराबरी का व्यवहार रखें, उनके साथ बीच बीच में बातचीत करते रहें, यानी एनवायरनमेंट अच्छा बना के रखें, तो उनकी वर्क परफॉर्मेंस बढ़ेगी
जी।
अगर वो ज्यादा सख्त रहेंगे, बात बात पे उनको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, टाइम के लिए ठीक है, टाइम जरूरी है, पाबंदी समय के हिसाब से आना जरूरी है, लेकिन अगर किसी कारण से कोई कर्मचारी थोड़ा लेट होता है तो उसमें वो एक्सक्यूज देते हैं या उनको आगे के लिए ऐसा मौका दें, जब किसी व्यक्ति को कोई लीव की जरूरत हो तो वो इजीली उसको लीव दे दें। तो वो कह रहे हैं कि उसके बाद में जो फेथ जो डेवलप होता है जो उनके सीनियर और जूनियर्स के बीच में, वो एक वर्किंग एनवायरनमेंट डेवलप होता है जो कि उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो वर्क प्लेस के ऊपर जो ये सब चीजें हैं कि आपसी व्यवहार कैसा है, वहां का जो वातावरण है वो कैसा है, उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। इसके अलावा अगर हम दूसरी बातें करें कि कुछ ऐसी जगहें होती हैं जैसे फैक्ट्रीज होती हैं, कुछ माइंस होती हैं या माइनिंग्स होती हैं, वहां पे जो पोल्यूशन है उसका भी मेंटल हेल्थ के ऊपर गलत इफेक्ट पड़ता है
जी।
तो वो अगर उनकी स्वास्थ्य का, उनकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का अगर ध्यान रखा जाए कि उनको ऐसी सभी चीजें प्रदान की जाए जिससे कि उनको कम से कम उनकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़े, जैसे भी कोई नॉइज पोल्यूशन है या कोई गैस का पोल्यूशन है, कोई स्मेल है या कुछ भी, मेरा मतलब ये है कि वहां पे जहां वो काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, उनको प्रॉपर चीजें मिले जिससे कि वो अच्छे से वहां पे उनके दुष्प्रभाव से बच सके, तो मेंटल हेल्थ के ऊपर उनका अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ये जो वर्किंग एनवायरनमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी कर्मचारी के लिए एक उस जगह पे 24 घंटे में से 8 से 10 घंटे या कई बार तो 12 घंटे भी लोग काम करते हैं, तो वो एनवायरनमेंट अगर उनको बहुत अच्छा मिलेगा तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो एब्सेंटीज्म कम होगी। कई बार क्या है कि ज्यादा एब्सेंट रहने लग जाते हैं, ज्यादा छुट्टियां लेने लग जाते हैं, किसी और तरीके से बहाना बना के कर्मचारी छुट्टी लेता है, वो सब समस्याएं अपने आप ठीक हो जाए क्योंकि बहाना बनाने की फिर जरूरत नहीं रहेगी। अगर सीनियर है वो आपको छुट्टी सेंक्शन कर देता है अगर आपको जरूरत है, तो फिर आप क्यों झूठ बोलोगे, क्यों करोगे। ये चीजें हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कैसा एक दूसरे के साथ में सामंजस्य रखते हैं, उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है
जी। डॉक्टर बेनीवाल, हमारे कार्यक्रम को देश भर में कोने कोने में लोग सुनते हैं और हर वर्ग का व्यक्ति सुनता है, तो कई बार क्या होता है कि इंसान को पता नहीं लग पाता कि क्या वाकई में उसकी मानसिक स्ट्रेस से गुजर रहा है, मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है। तो क्या इसके संकेत हैं, कुछ प्रमुख संकेत या फिर क्या लक्षण हैं कि जिससे पता कर पाएं कि हम एटलीस्ट इस इशू को तरीके से एड्रेस कर पाएं, सामने रख पाएं।
जी, तो ये सब समस्याएं अगर कई दिनों से क्रोनिक यानी रात दिन ये समस्याएं अगर कोई व्यक्ति फेस करता है तो उसकी वजह से वो अफेक्टेड होता है, और वो अफेक्टेड होगा तो वो किन लक्षणों के रूप में प्रदर्शित होगा, वो ये लक्षण होते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार है वो चिड़चिड़ा है, बात बात पे वो झल्लाने लग जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं या शाउट कर देते हैं और वो लड़ाई ज्यादा करने लग जाते हैं। तो दूसरे जो आसपास के उनके दोस्त हैं या कुलीग हैं या फैमिली मेंबर्स हैं उनको लगेगा कि ये पहले ऐसा कभी नहीं करते थे, पिछले 2 महीने से या 1 महीने से हम इनमें चेंज देख रहे हैं। अगर जरूरत होगी उस समय वो बोलेंगे नहीं, चुपचाप रहेंगे, अपने अंदर ही रहेंगे, या बोलेंगे तो सीधा गुस्से में ही बोलेंगे। तो ये एक लक्षण नोटिस करने को मिलता है। दूसरा, उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो यानी उनको अच्छे से नींद नहीं आती। अब नींद भी कई टाइप से डिस्टर्ब हो सकती है कि जब आदमी सोता है तो उस समय नींद आने में टाइम लग जाता है, या फिर नींद आ तो जाती है लेकिन वो बीच में 2 घंटे बाद ही उखड़ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद आ जाएगी, फिर आपको उखड़ जाएगी। तो ये जो स्लीप का जो डिस्टर्बेंस है वो इस रूप के अंदर उनको अफेक्ट करता है। जब व्यक्ति ज्यादा ही परेशान होता है तो उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है, इंटरेस्ट कम होता है तो उनका मन दुखी रहने लग जाता है, उदास हो जाते हैं और उसकी वजह से उनको भूख भी नहीं लगती। तो ये देखने को मिलता है कि आज के दिन को भूख कम लग रही है, ये खाना ही नहीं खा रही। तो स्लीप का डिस्टर्बेंसेस, नींद का डिस्टर्बेंसेस, और हम कहते हैं कि जो वेजिटेटिव फंक्शंस हैं बॉडी के, जैसे स्लीप, एपेटाइट, वेट, ये वेट भी कम होने लग जाता है, या फिर व्यक्ति उदास रहने लग जाता है तो कई बार वेट बढ़ भी जाता है। तो ये लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम और आगे जाएं, व्यक्ति को अगर डिप्रेशन यानी अवसाद की बीमारी होती है तो उसके अंदर वो रोने लग जाता है, कहीं भी जो काम पहले वो करने में आनंद प्राप्त करते थे उनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, लोगों से बात करना, कहीं जाना या शॉपिंग करने जाना या नई चीज खरीदना या कपड़े पहनने का शौक या कोई सामान खरीदने का घर के लिए शौक, वो सब कम हो जाते हैं और वो अवॉइड करते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी बातचीत करना, पार्टी में जाना, ये सब अवॉइड करते हैं, तो ये इंटरेस्ट कम हो जाता है, ये डिप्रेशन के लक्षण है। और कई बार तो अगर डिप्रेशन ज्यादा बढ़ जाता है तो व्यक्ति आत्महत्या के बारे में भी सोचने लग जाता है, उनको विचार आने लग जाते हैं और कई बार कमिट भी कर लेता हूँ। तो ये लक्षण डिप्रेशन के रूप में आते हैं। इसके अलावा एक और बीमारी जो कॉमनली मिलती है वो एंजाइटी है, कि उनको अचानक से रात को घबराहट हो जाती है, नींद में वो जग के बैठ जाते हैं, उनके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, पसीना आ जाता है, या कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, आज मैं वहां जाऊंगा काम पे तो क्या फेस करना पड़ेगा। तो ये सोच सोच के वो घबराते रहते हैं, बेचैनी पूरे दिन बनी रहती है, घबराहट बनी रहती है, पसीना आता रहता है। तो ये लक्षण चिंता के लक्षण होते हैं। शरीर के अंदर जैसे कहीं भी शारीरिक दर्द हो रहा है, पैरों में बेचैनी हो रही है, कुछ टिंगलिंग सेंसेशन होते हैं, ऐसे लगता है कि पैर जल रहे हैं, सिर भारी रहता है, सिर दर्द भी इवन होने लग जाता है। बहुत से पेशेंट हमारे पास हेडेक की कंप्लेंट लेके आते हैं और पता चलता है कि वो टेंशन हेडेक है, टेंशन की वजह से हेडेक है। तो 90% जो हेडेक का रीजन है वो टेंशन की वजह से होता है। तो ये लक्षण एंजाइटी के, डिप्रेशन के इनमें रहते हैं, जो कि कॉमनली इसमें मिलते हैं।
क्या बच्चों में भी ये संकेत देखने को मिलते हैं? क्या उनमें भी ये पॉसिबिलिटीज हैं?
बच्चों के अंदर भी ये मिलते हैं। अगर हम बच्चों के वर्क एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो बच्चों के लिए स्कूल एक वो वर्किंग एनवायरनमेंट के इक्वल हम मान सकते हैं। तो स्कूल में अगर माहौल अच्छा नहीं है, या किसी टीचर से बच्चा डर रहा है, या वहाँ पे उसके साथ बुलीज हो रही है, यानी जो साथ वाले बच्चे हैं वो उनको डराते हैं या उनको छेड़ते हैं या किसी बात पे चिढ़ाते हैं, मजे लेते हैं, तो बच्चा अवॉइड करने लग जाता है स्कूल जाना। और वो स्कूल जाना अवॉइड करेगा, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट कम होगा, घर पे भी वो बातचीत नहीं करेगा, चुप चुप रहने लगेगा, भूख भी कम हो जाएगी, और फिर देखने को मिलता है कि वो चिड़चिड़ा हो गया, गुस्सा कर रहा है, पेरेंट्स जब बात करते हैं तो वो झल्ला के बात करता है। तो बच्चों के अंदर इस टाइप के लक्षण मिलते हैं। और इसमें जो इरिटेबिलिटी जो मैं बोल रहा हूँ, ये एक कॉमन फर्स्ट सिम्टम होता है जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चा परेशान है। यानी बच्चों में जो डिप्रेशन के सिम्टम है वो ऐसे क्लियर कट नहीं आएंगे जो अडल्ट में है, कि जैसे मेरा मन उदास है, मैं दुखी हूँ, रोने लग जाऊं, ऐसे ना आके बच्चे में चिड़चिड़ेपन के रूप में ज्यादा प्रदर्शित होता है। अगर बच्चा चिड़चिड़ा रहने लग गया तो हो सकता है कि ये उसको अवसाद या डिप्रेशन के रूप में आप सोच सकते हो, और आगे फिर उसके बाद में उनको मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से कंसल्ट करके फिर आगे फर्दर डायग्नोसिस।
डॉक्टर बेनीवाल, सरकार की तरफ से क्या क्या पहल रही इस चीज को एड्रेस करने में, इस चीज में और समर्थन दिखाने में?
सरकार समय समय पे जैसा जैसा एक्सपीरियंस होता है, जरूरत होता है, उसके हिसाब से अमेंडमेंट करती रहती है। कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे कानून सरकार बनाती रहती है जिसकी वजह से वर्क प्लेस के ऊपर व्यक्तियों को दिक्कत नहीं हो। जैसे सरकार कुछ छुट्टियां देती है कि आप कैजुअल लीव ले सकते हो, अचानक से कोई दिक्कत है, आप मेडिकल लीव ले सकते हो अगर आप बीमार हो, या आप अर्न लीव ले सकते हो आपको अगर लंबी छुट्टी, तो ये राइट्स वो देती है कर्मचारियों को कि आप ये छुट्टी लें और आप उस समय अपने आप को अच्छे से ठीक करें, एंजॉय करें, एंटरटेन करें, और अच्छे से आप काम पे रहेंगे तो बढ़िया रहेगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी।
आज टेलीमानस सेवा को शुरू हुए 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर टेलीमानस एप्लीकेशन और वीडियो कॉल का उद्घाटन किया गया। टेलीमानस एक मानसिक स्वास्थ्य के लिए पहल है जो भारत में टेलीमेंटल हेल्थ सेवाएं प्रदान करती है। ये व्यक्तियों को प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों से फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से जोड़ती है, जिससे मनोवैज्ञानिक समर्थन तक पहुँच सुनिश्चित होती है। ये सेवा चिंता, अवसाद और तनाव जैसे विभिन्न मुद्दों को संबोधित करती है। ये सेवाएं 24 घंटे और 20 भाषाओं में उपलब्ध है। टोल फ्री नंबर्स हैं 1-4-4-1-6 और 1-800-891-4-4-1-6। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की प्रबंध निदेशक आराधना पटनायक ने इस अवसर पर क्या कहा, आइए सुनते हैं।
अब वीडियो कॉल की व्यवस्था हो गई है, जब वो काउंसलर से कनेक्ट करेंगे और काउंसलर को अगर लगता है कि इनकी परेशानी काफी ज्यादा है तो वो जो स्पेशलिस्ट है साइकेट्रिस्ट से कनेक्ट करने से पहले कंसेंट लेंगे उस व्यक्ति की, और उसके बाद उनका वीडियो कॉल करके सीधे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे उनको कनेक्ट कराएंगे, ताकि वो उनकी स्थिति जानने के साथ साथ उनको देखकर समझ सकें कि उनकी मानसिक स्थिति कैसी है।
तो श्रोताओं, अब वक्त है इस चर्चा को यहीं विराम देने का। डॉक्टर बेनीवाल, आपका आकाशवाणी के साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, शुक्रिया।
अभी आप सुन रहे थे मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ मनोचिकित्सक और प्रोफेसर डॉक्टर आरपी बेनीवाल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।